चतुर्थ बिंदु, महात्मा मोहम्मद और उनके संबंधी। कुरान में अनेक वाक्य महात्मा मोहम्मद के परिवार, इस्लाम धर्म में उनकी स्थिति आदि के संबंध में भी कहे गए हैं। अपने धर्म प्रवर्तकों को ईश्वर या उसका अवतार बना डालना धर्मानुयायियों का स्वभाव है। इसीलिए कुरान में मोहम्मद प्रेरित के अतिरिक्त कुछ नहीं 3:15:1 वाक्य बार बार दोहराया गया है। महात्मा मोहम्मद के प्रभु प्रेरित होने के विषय में निम्नलिखित कुरान के उद्गार हैं। जिसके पास तौरात, मूसा को दिया गया ईश्वरीय ग्रंथ यहूदियों की धर्म पुस्तक और इंजील, ईसा को दिया गया ईश्वरीय ग्रंथ ईसाइयों की धर्म पुस्तक में से उद्धरण है, जिसका उपदेश पुण्य कर्म के लिए है और निषेध पाप कर्म के लिए, जो पवित्र वस्तु को भक्ष्य हलाल और अपवित्र को अभक्ष्य हराम करता है, जो उन धर्मानुयायियों से उनके ऊपर भार और फंदे को अलग करता है, उस निरक्षर प्रेरित ऋषि के जो अनुयायी विश्वासी तथा सहायक हैं और उसके साथ उतरे प्रकाश कुरान का अनुसरण करते हैं, वही पुण्य के भागी हैं। 7:19:6 महात्मा का सम्मान। मैं मोहम्मद तुम्हारे सबके पास उस प्रभु का भेजा हुआ प्रेरित हूँ, जिसका आसन पृथ्वी और आकाश दोनों में है। 7:20:1 क्या मैं नया प्रेरित नहीं हूँ? जो कुछ प्रभु मेरे पास भेजता है मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। मंगल और अमंगल का सुनने वाला छोड़ मैं कुछ नहीं हूँ। 46:1-9 इस्लाम में यद्यपि महात्मा मोहम्मद ईश्वर के अवतार नहीं माने गए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान कम है। कहा है, तेरे मोहम्मद के साथ हाथ मिलाने वाले भगवान के साथ हाथ मिलाते हैं। मोहम्मद का हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ उनके हाथों में है। 48:1-10 पृष्ठ संख्या 25 इंजील में उनके लिए भविष्यवाणी। हे विश्वासियों, मुसलमानों, प्रेरित मोहम्मद के स्वर से तुम ऊंचा न चिल्लाओ और उसके साथ उस प्रकार से बातचीत न करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बोलते हो। 49:1-2 परमेश्वर और देवदूत प्रेरित के पास आशीर्वाद भेजते हैं। हे विश्वासियों, तुम भी उसके लिए आशीर्वाद और शांति की कामना करो। 33:7-4 मुसलमानों का यह भी विश्वास है कि यहूदियों की भांति ईसाइयों के भी धर्म ग्रंथ में महात्मा मोहम्मद के प्रेरित होकर आने की भविष्यवाणी है, किंतु दुराग्रहवश वह इसे स्वीकार नहीं करते। कुरान में यह भाव निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, हे इसराइल की संतानों, यहूदियों, मैं प्रभु प्रेरित होकर तुम्हारे पास आया हूँ, पहली पुस्तकों तारात आदि को प्रमाणित मानता हूँ और एक प्रेरित का शुभ समाचार देता हूँ कि जो मेरे बाद आएगा उसका नाम मोहम्मद है। फिर जब वह मोहम्मद उनके पास प्रमाणों के साथ आया तो कहते हैं, यह साफ जादू धोखा है। 61:1-6 महात्मा मोहम्मद की प्रधानता। महात्मा मोहम्मद के पास ईश्वरीय संदेश के आने का कोई समय निश्चित न था। वह सोते बैठते किसी समय पर भी आ जाता था। एक समय जब महात्मा रजाई ओढ़े सोए थे, उसी समय यह संदेश आया, हे लिहाफ ओढ़ना में लिपटे, उठ और भय सुना। 74:1-1-2 निम्नलिखित वाक्य भी इस्लाम में महात्मा मोहम्मद की प्रधानता प्रदर्शित करते हैं। हे विश्वासियों, ईश्वर और प्रेरित की आज्ञा मानो। 4:8-9 विश्वासी मुसलमान वह है जो ईश्वर और प्रेरित पर विश्वास लाए हैं और शंका नहीं करते। 49:2-5 महात्मा मोहम्मद अंतिम भगवत दूत। जो कोई परमेश्वर और उसके प्रेरित की आज्ञा न माने उसको सर्वदा के लिए नरक की अग्नि है। 72:2-4 महात्मा मोहम्मद के आचरण को आदर्श मानकर उसे दूसरों के लिए अनुकरणीय कहा गया है। तुम्हारे लिए प्रभु प्रेरित का सुंदर आचरण अनुकरणीय है। 33:3-1 यह क्या ही आए हैं कि अरब के लोग उस समय एकदम असभ्य थे। उन्हें छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े आचार और सभ्यता संबंधी व्यवहारों को भी बतलाना पड़ता था। उनको गुरु शिष्य पिता पुत्र बड़े छोटे के संबंध का भी विशेष विचार नहीं था। महात्मा मोहम्मद को गुरु और प्रेरित स्वीकार करने पर उनका यही मुख्य संबंध मुसलमानों के साथ है, न कि भाई बंदी चचा भतीजा वाला पहला संबंध। यथा मोहम्मद, तुम पुरुषों में से किसी का बाप नहीं, वह प्रभु प्रेरित और सब प्रेरितों पर मोहर अंतिम है। 33:5-6 मुसलमानों का उस मोहम्मद के साथ प्राण से भी अधिक संबंध है और उसकी स्त्रियां तुम्हारी मुसलमानों की माताएं हैं। पृष्ठ संख्या 26 महात्मा मोहम्मद के विवाह। कितने ही नए मुसलमान महात्मा पर अपने मुसलमान हो जाने का आभार एहसान रखते थे, जिस पर कहा गया है, तुझ पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए। क्या मुझ पर एहसान मत रखो, यह परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है कि तुमको सच्चा रास्ता दिखा दिया। 49:2-7 महात्मा मोहम्मद का प्रथम विवाह श्री खदीजा के साथ 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। विवाह के अनंतर वह 25 वर्ष तक जीवित रहीं। मदीना प्रवास से 3 वर्ष पूर्व, जबकि महात्मा 50 वर्ष के हो गए थे, उनका स्वर्गवास हुआ। इस्लाम की शिक्षा सर्वप्रथम इन्होंने स्वीकार की। कई कारणों से मजबूर होकर महात्मा को प्रायः 10 विवाह और करने पड़े, किंतु यह सब 53 वर्ष की अवस्था के बाद हुए। यहाँ पर महात्मा के पास एक जैद नाम का दास रहता था। उसके मुसलमान हो जाने पर उन्होंने इतना ही नहीं किया कि उसे दासता से मुक्त कर दिया, प्रत्युत अपना पोष्य पुत्र बनाकर उसका विवाह अपनी फूफी उमैया की लड़की जैनब से करा दिया। जैनब की बड़ी बड़ी इच्छाओं और उच्च वंश के अभिमान ने दासता से मुक्त जैद के साथ पटरी न जमने दी। दोनों में बराबर झगड़ा होने लगा। अनेक बार जैद ने संबंध विच्छेद तलाक करना चाहा, किंतु बार बार महात्मा अपने स्त्री को अपने पास रहने दे और भगवान से डर कहकर उसे रोक दिया करते थे। यद्यपि बार बार परीक्षा ने उन्हें निश्चित कर दिया था कि उन दोनों का मन मिलना कठिन है, किंतु संबंध विच्छेद से उत्पन्न होने वाली कठिन समस्या को देखकर वह इसी तरह टालते जाते थे। जैनब और उसके भाई मुसलमान होने के कारण कुरैशियों के कोपभाजन हुए थे और उन्होंने भी घर बार छोड़कर मदीना में प्रवास किया था। तलाक देने पर जैनब का विवाह होना कठिन था। मुसलमान होने से मुसलमान बहनों के साथ संबंध नहीं हो सकता था और मुसलमान में भी कुरैश के वंश की प्रतिष्ठा के ख्याल से किसी अकुरैशी से विवाह अयुक्त था, यद्यपि इसे बहुत पहले ही आदेश मिल चुका था। भगवान ने पोष्य पुत्र को तुम्हारा पुत्र नहीं बनाया, यह तुम्हारी कपोल कल्पना है। 33:1-4। इससे जैनब के साथ ब्याह करने में इस्लाम धर्म के अनुसार कोई बाधा न थी, परंतु महात्मा लोकापवाद से डरते थे। लोग कहेंगे मोहम्मद ने अपनी पतोहू घर में रख ली, किंतु इस्लाम के प्रवर्तक की यह निर्बलता बहुत हानिकर होती यदि वह शिक्षा को लोकापवाद से डरकर छोड़ देते, जिसके कि वह स्वयं प्रचारक थे। फिर तो उनके अनुयायी क्यों न बहिर्मुख हो जाते। इसीलिए कुरान ने आदेश दिया, महात्मा मोहम्मद की पत्नियां, भगवान से डर। तू जो कुछ अपने भीतर छिपाना चाहता था भगवान उसे प्रकाशित करना चाहता है। तू मनुष्यों से डरता है, किंतु परमेश्वर से डरना ही सर्वोत्तम है। जब जैद की उससे इच्छा पूर्ण हो गई तो हम ईश्वर ने उसे जैनब को तुझे ब्याह दिया। यह इसलिए कि मुसलमानों पर अपने मौखिक पुत्रों की स्त्रियों से ब्याह करने में हर्ज न हो। 33:5-6। मदीना प्रवास से पहले महात्मा ने एक ही ब्याह किया था, यह था श्री खदीजा के साथ। वह प्रवास से 3 वर्ष पूर्व ही स्वर्गवासिनी हो गई थी। बाकी विवाह जो मदीना में आने पर 53 वर्ष के बाद हुए, उनकी संख्या 9 से अधिक बतलाई जाती है। पृष्ठ संख्या 27। प्रधान स्त्रियों के नाम ये हैं। 1. श्री आयशा, द्वितीय खलीफा अबू बकर की पुत्री। 2. श्री हफ्सा, तृतीय खलीफा उमर की पुत्री। 3. श्री सौदा। 4. श्री सलमा। 5. श्री जैनब। 6. श्री हबीबा। 7. श्री जवेरिया। 7. श्री मैमुना। 9. श्री साफिया। इनमें से पहली 6 कुरैश वंश की थी। आत्मरक्षा के लिए सब तरह से हार कर मुसलमानों ने तलवार की शरण ली। उन्हें इस्लाम के शत्रुओं कुरैश और उनके साथी यहूदियों से अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिनमें अनेक मुसलमान वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी स्त्रियां विधवा हो गईं। अब उनके पालन पोषण का प्रश्न उठा। मुसलमानों की संख्या कम थी और उतने ही में प्रबंध करना ठहरा। इस छोटी सी बिरादरी के साथ संबंध की अनिवार्यता ने महात्मा मोहम्मद को और भी मजबूत किया कि वह उन विधवाओं और उनके संबंधियों को संतुष्ट करने के लिए और भी शादियां करें। ऐसी ही कठिनाइयों में खुनैस की विधवा हफ्सा, अब्दुल्ला की विधवा जैनब और अबू सलमा की विधवा सलमा से विवाह करना, उबैदुल्ला की विधवा हबीबा से भी उपयुक्त कारणों से ब्याह हुआ। जो 3 विवाह कुरैश भिन्न वंशों में हुए, वह भी लड़ाकू सरदारों को ब्याह संबंध से शांत रखने के लिए। श्री अबू बकर के आग्रह ने आयशा से ब्याह करने पर मजबूर किया। इन सब बातों से यह भली प्रकार पता चल सकता है कि महात्मा ने यह अनेक ब्याह विषय भोग के लिए नहीं, किंतु अन्य ही किन्हीं सदिच्छाओं से प्रेरित होकर किया। प्रेरित मोहम्मद के अपने ब्याह के विषय में कुरान की निम्न प्रकार की आज्ञा है, नबी के विवाह योग्य स्त्रियां। हे प्रेरित, जिन पत्नियों को तूने स्त्री धन, वह धन जो ब्याह के समय पुरुष स्त्री के लिए स्वीकार करता है और जिसे पुरुष के अपराध से ब्याह संबंध टूटने पर स्त्री को दे देना पड़ता है, दे दिया। जो तेरे दाहिने हाथ की संपत्ति, युद्ध में दासी बनाई गई स्त्रियां हुई, तेरे चचा, फूफी, मामा और मौसी की बेटियां, जिन्होंने तेरे साथ प्रवास किया, तथा कोई भी मुसलमान स्त्री जिसने अपने को नबी प्रेरित के लिए अर्पण कर दिया और नबी तू उनके साथ ब्याह करना चाहे, यह सब तेरे लिए विहित है। 33:6-9। महात्मा मोहम्मद की विलास शून्यता। महात्मा मोहम्मद का जीवन कितना भोग विलास से शून्य था, उसका पता उस वाक्य से लगेगा जिसमें कहा गया है, हे नबी, अपने स्त्रियों से कह, यदि तू सांसारिक जीवन और उसके भोग विलास को चाहती हो तो आओ, तुम्हें कुछ देकर भली प्रकार विदा कर दूं। और यदि तुम परमेश्वर, उसके नबी और अंतिम दिन को चाहती हो, तो अवश्य ईश्वर ने ऐसी सदाचारिणी स्त्रियों के लिए उत्तम फल निश्चित कर रखा है। 33:4-1-2। जब कई एक विजयों के लूट के माल से मुसलमान लोग संपत्तिशाली हो गए, उनके घर सुख सामग्रियों से पूर्ण थे, उनकी स्त्रियां सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित रहा करती थीं, घर का काम काज करने के लिए उनके पास युद्ध के बंदी दास दासी भी मौजूद थे, इस प्रकार आनंद करती अपनी पड़ोसियों को देखकर महात्मा मोहम्मद की स्त्रियों में भी उनके लिए इच्छा पैदा होना स्वाभाविक था। पृष्ठ संख्या 28। इसी पर उपर्युक्त कुरान का वाक्य कहा गया है, उन्हें औरों की अपेक्षा भोग सामग्रियों से ही केवल वंचित नहीं किया, बल्कि अपराध करने पर लिखा है, नबी की स्त्रियों का उत्तरदायित्व। हे नबी की स्त्रियों, जो कोई तुम में से अपराध करे, उसको दून दंड यातना है। 33:4-3। सचमुच नबी और उनके परिवार को अपने अनुयायियों के आदर्शभूत होने के कारण सब प्रकार से उसके योग्य होना आवश्यक है। हे नबी की पत्नियों, तुम सर्वसाधारण स्त्रियों की भांति नहीं हो। 33:4-4। यहाँ उनकी जवाबदेही भी स्पष्ट कर दी है। स्त्रियों से विवाद। उस समय अरब निवासियों में स्त्रियां तुच्छ गिनी जाती थी। वह उनके लिए विलास सामग्री और काम करने की मशीन थी। उनको अधिकार नहीं था कि पुरुष की किसी बात का उत्तर दे, किंतु हजरत ने अपनी स्त्रियों को बहुत कुछ स्वतंत्रता दे रखी थी। कहावत है कि एक समय उमर की पत्नी ने अपने पति को कुछ सलाह दी। अरब की प्रगति के अनुसार उमर ने कहा, इससे तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। पत्नी ने कहा, तुम्हारी लड़की हफ्सा क्या हजरत को उत्तर पर उत्तर देती जाती है, यहाँ तक कि वह अप्रसन्न तक हो जाते हैं, किंतु तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसे विषयों में तुम्हें कुछ परामर्श दूँ। यह सुनकर उमर को हफ्सा पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने जाकर हफ्सा से ऐसा न करने को कहा। जब यही परामर्श उन्होंने नबी की एक दूसरी स्त्री उम्म सलमा को देना चाहा, तो उसने रूखा सा उत्तर दिया, आयशा और हफ्सा का नबी से झगड़ा। नबी की स्त्रियों की बातों में तुम्हें दखल देने का कुछ अधिकार नहीं। महात्मा की स्त्रियों को सचमुच दूसरी स्त्रियों से बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह उनकी बातों का भी बड़ा ख्याल किया करते थे। एक समय की बात है कि हजरत ने बिना बारी के जैनब के घर में जाकर मधु खाई। इसे आयशा और हफ्सा सहन न कर सकीं। उन्होंने चिढ़ाने के लिए महात्मा से कहना आरम्भ किया, मधु की गंध आती है। इस पर हजरत ने मधु का सर्वदा के लिए शपथ पूर्वक परित्याग कर दिया। किंतु कहीं मुसलमान लोग भी मधु को निषिद्ध न समझ लें, इसलिए उन्हें आदेश हुआ, हे नबी, जो तेरे लिए विहित है, क्यों तू उसे निषिद्ध करता है? तू अपनी पत्नियों की प्रसन्नता चाहता है। ईश्वर कृपालु और क्षमाशील है। अपनी शपथों को तोड़ डालना ईश्वर तुम्हारा कर्तव्य ठहराता है। 61:1-2। बहुविवाह का दुष्प्रभाव एवं सपत्नी कलह प्रसिद्ध ही है। जरा एक पत्नी से अधिक वार्तालाप होते देखा नहीं कि दूसरी जलने लगती थी। एक बार आयशा और हफ्सा ने ऐसा ही विवाद उठाया और यहाँ तक बढ़ा कि अंत में कुरान को इसके बारे में उपदेश देना पड़ा। अगर तुम दोनों प्रभु के पास पश्चाताप करती हो तो तुम्हारे हृदय विनम्र हो गए, परंतु यदि तुम दोनों, पृष्ठ संख्या 29, उस मोहम्मद पर चढ़ाई करो तो निश्चय परमात्मा जिब्राइल देवदूतों में प्रमुख, साधुशील मुसलमान और देवदूत उसके सहायक उसकी पीठ पर हैं। यदि अभी नबी तुम्हें परित्याग कर दे तो इसके बदले परमात्मा उसे तुमसे अच्छी पत्नियां देगा, जो कि आज्ञाकारिणी, विश्वासिनी, अभ्युत्थानशील, पश्चाताप कर्त्री, सेविका, व्रत करने वाली और कुमारी होंगी। 66:1-3-4। बिना बुलाए घर में जाना निषिद्ध। नबी की स्त्रियां तुम्हारी माताएं हैं, यह पहले लिखा जा चुका है। इस वाक्य ने ही प्रेरित की विधवा स्त्रियों से मुसलमानों का विवाह होना अयुक्त ठहराया। उस समय के साधारण अरब निवासियों के दुराचार को देखते हुए मुसलमानों के आचरणों पर विशेष ध्यान दिया गया। अपने आचरण से इस्लाम के महत्व पर प्रचार करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य ठहराया गया। उनका दूसरी स्त्रियों से अधिक संपर्क होना निषिद्ध कर दिया गया। स्वयं अपने गुरु के घर में भी अनावश्यक आना रोक दिया गया। कहा है, भोजन के लिए जब तक बुलाए ना जाओ, नबी के घर में प्रविष्ट न हो, और जब भोजन कर चुको तो चले जाओ। गपशप आपस में मत करते रहो, क्योंकि तुम्हारे इस व्यवहार से नबी को कष्ट पहुंचता था, किंतु वह तुमसे कहने में संकोच करता था। 33:7-1। इस बिंदु में संक्षेप में उन बातों को एकत्र करने का प्रयत्न किया गया है जिनका संबंध हजरत मोहम्मद से विशेष कर है। यहाँ इस विषय में एक और बात का निर्देश कर देना आवश्यक है, वह है युद्ध की लूटी संपत्तियों का विभाग। प्रत्येक ऐसी संपत्ति का पंचमांश नबी के पास जाता था जो परमेश्वर प्रेरित के संबंध अनाथों, दरिद्रों और पथिकों के लिए व्यय किया जाता था। 8:5-4।